Sonho não, não.
Agora todos os meus dias, uma vez a mais, não podemos ter um
एयरपोर्ट में भी जाते हैं तो अब वहां पर काउंटर में आपको खड़ा हुआ बोर्डिंग कार्ड कोई नहीं देता,
अब आप खुद ही या तो स्कैन करते हैं या तो वो करते हैं और खुद ब खुद हर चीज जो है वो बाहर आ जाती है, यानी मशीन और इंसान जुड़ता जा रहा है। अब इस दौर में कि जहां पर इंसान इतनी तरक्की कर रहा हो, जहां इंसान की सोचें यहां हो, वहां पर आप क्या समझते हैं इमाम जमाना के लिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे क्या? लेकिन रिवायत और हदीस अपने जमाने के हिसाब से बयान की जाती थी, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स थे वो हर जमाने में चेंज होते थे। मिसाल के तौर पर मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब, इमाम ने कहा कि कुछ चीजें इंसान को आनी चाहिए, क्या? मिसाल के तौर पर सवारी इस्तेमाल करना आनी चाहिए। अब उस जमाने में सवारी घोड़ा था, ऊंट थे। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि चले ऊंटों की सवारियां याद करें, आप नहीं कर सकते सिवाय कुछ जगहों पर जहां पे वो, इसका मतलब ये एक वैसा वेरिएबल है जो हर जमाने में चेंज हो रहा है। यानी आज की सवारी मोटरसाइकिल हो सकती है, आज की सवारी गाड़ी हो सकती है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आज की सवारी जहाज हो सकती है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, जेट हो सकता है। तो हर इंसान अपनी जरूरत के साथ उसको इसका सीखना जरूरी है, वरना अगर बोले नहीं जी हम तो वही है वही हदीस है, तो फिर आप वही बैठे रहेंगे, फिर आप उससे बाहर नहीं आएंगे। जबकि मेरा मौला उस जमाने में गुफ्तगु ऐसी कर रहा है कि ता कयामत तक जो है वो असर हाजिर में। अब जब इतनी एक ऐसी बड़ी शख्सियत कि जिसके लिए कुरान कह रहा है कि भी अल्लाह का वादा है वो हक होगा और वो पूरी दुनिया पे जो है वो हुकूमत करेगा, तो उसके लिए क्या हम पीछे बैठे रहे? मतलब हमारे सोचे इमाम आएंगे जी तलवारों की जंग होगी, ये होगा वो होगा, अब ना हमें तलवार चलाना आती है ना हमने कुछ करना है, तो हम बोलेंगे हम तो मौला कुछ कर ही सकते मौला, तो क्या इमाम आपसे ही तकाजा करेंगे? क्योंकि देखिए चीजें वेरिएबल्स हैं। 313 कमांडर होंगे, वो 313 कमांडर जो होंगे वो हमारे जहन में क्या होता है कि जंग हो, वो 313 जो है वो स्ट्रेटेजिकल प्लानर भी हो सकते हैं, वो 313 थ्योरीशियन भी तो हो सकते हैं, वो 313 अपने अपने प्रोफेशन के हेड भी तो हो सकते हैं। मगर क्या इमाम जमाना को सिर्फ मार खाड़ फैलाना रास्ता करनी है? इमाम जमाना को इकोनॉमिक्स का एक सिस्टम डिजाइन नहीं करना, इमाम जमाना को आईटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बताना, इमाम जमाना को बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। मगर क्या इमाम के जमाने में पैसों की रेलफेल नहीं होगी? मगर क्या इनका इमाम के जमाना के जमाने में जो है वो हॉस्पिटल और ये सारी चीजें नहीं होगी? मगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी? मगर मीडिया नहीं होगा? मगर और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री नहीं होगी? तो फिर हम अपने आप को कहाँ रख रहे हैं कि हमारा क्या तकाजा है इस वक्त कि हम अपने आप को समझे, जमाने को समझे। इसलिए पहले जमाने को समझे, पहली मारिफत जमाना है कि आप किस जमाने में हैं, आप किस मकान में हैं, ये मुहिम है। आपकी स्टेट क्या है, आप कौन सी जगह पर रहते हैं? अब आप यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूं नहीं सफर करूंगा, मैं मेट्रो में सफर नहीं करूंगा, मैं ट्राम में नहीं चलूं, मैं क्यों? आपकी रिक्वायरमेंट है इस जमाने में, आपको इसी चीज के साथ अपने आप को मूव करना है आगे। अगर आप बोले जी अलग थलग रहे तो अगर आप खुदा ना खास्ता हर चीज में अलग थलग हो जाए, कट के रह जाए, तो आप जमाने के साथ नहीं है। आप किस तरह अपनी फ्रिक्वेंसी को जमाने की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेंगे? आप कैसे लोगों को कल दावत देंगे वहां पे जमाने की? तो वो तो जब आप माशरे में खुद को अपने आप को एलियन बना रहे हैं, हम अलग है, हमारा किसी से मिलना जुलना नहीं है, हमारा रब्ता नहीं है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, اس لیے آپ اس بصیرت کو سلام کریں جو ہمارے مستحدین کی ہے، جو کہ ہر زمانے کے حساب سے ہمارے لیے فتاوے، ہمارے لیے چیزوں کو یا منع کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں یا اجازت دے رہے ہیں. یعنی یہ ان کی بصیرت ہے اس زمانے کی. وہ مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے بعض اوقات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا سوچ محدود ہے، ہمارا دیکھنے کا زاویہ محدود ہے. ہم بہت زیادہ دیوار دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ دیوار کے باہر ہمیں جگہ نظر آئے گی، بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اطراف کو دیکھ رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں، مگر جو واقعی امام کا جو نائب ہے، امام کے سرباز ہیں، امام کے مستحدین ہیں، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ میرے اور آپ کی وجہ سے چیزوں کے لیے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو وہ بات کو آپ کو پسند نہ ہو. اس زمانے میں کتنوں کو کتنی چیزیں پسند نہیں آئی تھی جب رسول کا زمانہ تھا. یا رسول اللہ، ہمارے ابا اجداد تو یوں کرتے تھے، ہمارے تو یوں کرتے تھے. رونا وہ دور گیا، اب ہم جو کہیں گے اس پہ عمل کرنا ہے. عزیزان، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم بہت ساری چیزوں کو اگر اپنے اندر ویریبل نہیں ہونے دیں گے، اپ اینڈ ڈاؤن، تو جب امام آئیں گے تو اس وقت بھی ہم کہیں گے مولا یہ کیوں نیا دین لے کر آئے آپ؟ مولا ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، مولا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو یہ رواج تھا، ہماری کمیونٹی میں تو یہ رواج تھا. تو پھر مولا کیا بولیں گے؟ کیا آپ مولا کو بتائیں گے؟ عزیزان اللہ میں فکر ہے، یہی اصل تقاضا ہے کہ اپنے ذہن کو زمانے کے ساتھ اپلفٹ کرے، انہینس کرے، دنیاوی علوم پر حاوی ہو، آنا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. ہمارا معاشرہ، ہمارے اپنے ممالک میں جائیں، بہرحال وہاں پر ایجوکیشن تنزلی کی طرف ہے. نہیں ہے ہمارے پاس اب اچھے انجینئرز، ڈاکٹر، ساری چیزیں. یہاں آپ کے پاس ماشاء اللہ مواقع ہیں، ہر چیز فیسلٹیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہم کل کو کیا جواب دیں گے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، کیونکہ ہر شخص جس دور میں، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف خدا نے کیا فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کو، زمانے کے امام کو نہیں جانتا وہ جہالت کی موت مرا ہے. جہالت کی موت مرا ہے. عزیزانِ مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو جانتے ہیں، کیوں امام زمانہ امام زمانہ کہا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پہ کہ زمانے کو پہچانو، تم کس زمانے میں ہو اور تمہارا امام تمہارے زمانے کا امام ہے. جب ہم اپنے امام کے زمانے کی بات کریں اور باتیں اور اپنے ارادے اور اپنی سوچیں اور اپنے کرنے والے کاموں کو 100 سال پیچھے کا سوچیں، تو کس طرح ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کی ہے؟ زمانے کے امام کی معرفت، یعنی ابھی جو تمہارا امام ہے، وہ بولے گی امام تو 100 سال پہلے بھی یہی تھے، 200 سال پہلے بھی یہی تھے، 300 سال پہلے. اسی لیے کہا تھا کہ اپنے اپنے زمانے میں امام کو پہچانو. جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہو، معرفت کیا ہے؟ معرفت ہم اتنا سنتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم سوچے تقوا 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 نہیں. یہ تقوا کیا ہے؟ بعض اوقات بہت سے لوگ ایسا تقوا اختیار کر لیتے ہیں، معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، مگر کیا یہ تقوا کی ضرورت تھی؟ اس طرح معرفت کیا ہے؟ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کسب معرفت کیا ہے؟ تو آئیے اس کلام نور سے کہ چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، اے لوگوں، خداوند نے لوگوں کو خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کو پہچان سکے. یعنی صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل، پہچانے اس کو وہ کیا ہے، کون ہے وہ. اور جب اس کو پہچان لے تو پھر اس کی پرستش کریں، عبادت کریں. اور جب اس کی پرستش کرنے لگ جائیں، اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور یہ پرستش، یہ عبادت غیر کی بندگی سے انہیں بے نیاز کر دیں. یہ ہے بات ہوتی ہے، عبادت اسی کو کہتے ہیں، بندگی اسی کو. جب اللہ کے بندے ہو گئے تو پھر کسی اور کے بندے نہیں ہو، پھر اپنی خواہشات کے بندے نہیں ہو، پھر اپنے کسی حاکم کے بندے نہیں ہو، پھر کسی اور چیز کے بندے، پھر صرف اس کے بندے ہو. یعنی لا الہ الا اللہ ہے ہی یہی کہ جب تک تم نفی نہیں کرو گے سب کی، تب تک تم اس کے نہیں ہو سکتے. नफी जरूरी है, नहीं से शुरू हो रहा है, नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, फिर क्या होगा, जब सब की नफी करोगे तो सिर्फ वो ही रह जाएगा। सबसे महंगी खुशबू है, मखसूस हिरन की नाक की खुशबू कहते हैं, कि बूटी मन विच मेरे अंदर मुशक मुचाया, जान फुल्लण ते आई हो, जीवे मुर्शिद कामिल भाव जे बूटी लाई हो। यानी ये वो है कि ये जब तक आप नफी नहीं करेंगे, जब तक आपका पूरा वजूद बेनियाज नहीं हो जाता है चीज से, तब तक आप बंदगी नहीं कर सकते उसकी। और ये फरमाते हैं, तो एक शख्स मौला की खिदमत था कि मौला ये सब जो आपने बयान किया कि अल्लाह ने खल्क नहीं किया कि जब तक वो खुद पहचाना ना जाए, और पहचानने जब जाए तो परस्तिश करे, इबादत करे, और ये इबादत उसको गैर की बंदगी से दूर कर दे, तो फिर ये मारिफत हासिल कैसे होगी। शख्स ने कहा कि अपनी मारिफत, ये पहचान कैसे हो, तो मेरा मौला फरमाता है कि ये मारिफत अपने जमाने के इमाम को पहचानना और उसकी अताअत जो तुम पर वाजिब है उसको अंजाम देना ही मारिफत है। हस्सन मोहतरम, हमें क्या पता है इमाम का नाम, बहुत हुआ वाजिब का नाम, बहुत हुआ वादा का नाम, बहुत हुआ रोजे पैदाइश, बस इमाम है कौन, इमामत क्या है, इमाम किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे, क्योंकि हम इसी घरानों में पैदा हुए तो हमारे लिए कॉमन है, आसान सी है, बदी है, यानी हम जानते हैं, लेकिन हमने कभी उन पर तफक्कुर नहीं किया, फिक्र नहीं किया कि इमामत है क्या, इमामत की जरूरत क्यों है, क्यों इमाम के बगैर कायनात का निजाम नहीं चल सकता। तो जब आप इनकी तरफ मुतवज्जा होंगे तो खुद ब खुद आपको अपने वक्त के इमाम की मारिफत होगी, और उस मारिफत के लिए कुछ चीजें हैं कि खूब हम मैं कैसे करूं, प्रैक्टिकली भी मौलाना साहब कुछ स्टेप बताएं कि हम क्या करें, कौन सी चीजें करें कि वो वक्त के इमाम के करीब हो, ताकि हम एक हकीकी मुंतजिर बन सके। खूब मुंतजिर किसे कहते हैं, खूब इंतजार करने वाला, किसका इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है। एक आलम दीन मस्जिद पढ़ा करते थे और हमेशा वो कहते थे कि सारी जिंदगी जब भी मस्जिद पढ़ी सिवाय इमाम जमाना के किसी की नहीं पढ़ते थे। ऐसे बुजुर्गान वो कहते थे कि एक दफा मजलिस पढ़ रहे थे तो वहां पे कुछ लोग जो बैठे हुए थे उनकी एवरेज एज 40-50 साल ऐसे थी। उन्होंने कहा कि आपने पूरी इतनी जिंदगी में आपने मसलन घर में मुर्गियां पाली हुई हो, आप अपने घर जाए आपको आपके सहन में मुर्गियां नजर ना आए तो आप क्या करेंगे। कहा गेट पे जाएंगे देखेंगे, खूब गेट पे नजर ना आए तो क्या करेंगे। कहा गली के कोने तक जाएंगे, कहा गली के कोने पे ना मिले कहाँ जाए, कहा बाजार तक जाएंगे। तो आलमदीन ने कहा मुर्गियों की कीमत कितनी है, मुर्गी की औकात कितनी है, उसके लिए तुम बाजार तक चले गए, 1100 साल से तुम्हारे घर एक मेहमान नहीं आया, 1100 साल एक मेहमान नहीं आया, तुमने कितना ढूंढा उसे, तुम कभी तड़पे। हाँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कहानियां नहीं है कि मैं कितना तड़पा हूं उसके लिए, मैंने कितना इंतजार किया। एक शादीशुदा नए जोड़े शादी हुई, लोग खाने पे क्या घर पे बुलाया तो एक फ्रेम रखा हुआ, फ्रेम में किसी की तस्वीर नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी सही शादी हुई तो आप अपनी तस्वीर लगाते हैं। कहा नहीं, ये फ्रेम हमने इसलिए रखा है कि हमारा एक मेहमान है, वो अभी तक नहीं आया है, और जब तक वो नहीं आता हम इस फ्रेम को देखकर उसको याद करते हैं। अजीजा ने अपने घर के अंदर ये प्रैक्टिकल स्टेप उठाना पड़ेगा, कहीं पर या साहिब जमान लिखे, कहीं पर कोई ऐसी चीज हो कि जो सुबह शाम आपको वक्त की मांग की याद दिलाए। कैसे मोहब्बत का तकाज, मोहब्बत प्रैक्टिकल है, मोहब्बत सिर्फ जमाना नहीं थी। मस्जिद में आए तो मामा जमाना याद आ जाए, मेंबर में आए तो मामा जमाना, बाकी घर में गए मामा जमाना। घर में दुनिया जान की चीजें हैं जितनी हमारी है, कि ये क्या हो गया, मैच का क्या हो गया, फलाने का क्या हो गया, फलाने ड्रामे का क्या हो गया, फलानी सिचुएशन का क्या हो, कितने हम क्यूरियोसिटी रहती है, कितना हम ढूंढते हैं कि हमारा इमाम किधर है। वो जिनको तौफीक हुई है कर्बला की या कूफा की या मक्का की, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अदा फरमाए सारे इमाम के लिए। लेकिन क्या कभी हमने वहां जाके ढूंढा जिला ने मत, कभी देखा कि मस्जिद कूफा में, कभी मस्जिद सहला में, कभी किसी जगह पर, किसी जगह पर हमने ढूंढा अपने वक्त के इमाम को। मगर क्या वक्त का इमाम कोई ऐसी वादी में रहता है कि वो हमारे दरमियान में हो, दरमियान में क्या पता हमें हमें मिले, हमारे पास से गुजर जाए, नहीं पहचान पाए, क्योंकि हम मुतवज्जा नहीं है उसकी तरफ। अज़ीज़ा ने मतलब ये तकाज़े प्रैक्टिकल स्टेप है कि पहली चीज अपने वक्त के इमाम के लिए दुआ करें। इसलिए कहा कि दुआ जो गैबत में दुआ सलामती इमाम जमाना दुरूद भेजे मोहम्मद
निकालते हैं।
मगर इमाम के लिए हमने कितना सदका निकाला, यहीं से पता चल जाता है आदमी को कि अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करता है इंसान, कितनी देर लगती है, कितना अपने दे? तो जब आज हमसे ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी, दुआ नहीं होगी, सदका नहीं देंगे, खाने की टेबल पर अपने बच्चों के साथ बैठकर इमाम का जिक्र नहीं करेंगे, इमाम के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ेंगे, तो कल हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आए और हम उसके पास चले जाएंगे? नहीं हो पाएगा। सख्त है ये आसान नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम, लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया था, कितने हजार खत दिए गए थे, मगर कितने लोग गए? तारीख इबरत है हमारे सामने। तो ये ना हो कि हम, और उसके लिए एक और चीज मुहिम, हम अपने ज़हनी अफकार को सही करें, अपने ज़हनी नजरियात को सही करें, क्योंकि जब तक हमारी सोच का स्ट्रक्चर सही नहीं हो पाएगा, हम रुश्द नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि बात देखिए, क्योंकि देखिए, जब तक सही निजाम में इंसान परवान नहीं चढ़ता, होता है ना बाद अगर आप किसी भी, अगर आदमी बिल्कुल सलाहियत नहीं है लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला दिला दे, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा दे, उस इंस्टीट्यूशन का असर होता है उसके ऊपर, उसका असर होता है। आप क्यों कोशिश करते हैं बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, क्यों कोशिश करते हैं बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए? क्योंकि उसका एक अपना असर होता है। इसी तरह निजाम फिक्री भी हाकिम है इंसान की जहनीत के ऊपर। अगर वो सही होगा तो ये बच्चा या जवान कहीं पर भी होगा, ये सही परवान चढ़ेगा, ये अपने वक्त की सही मारिफत हासिल कर पाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इमाम के लिए तज़किया नफ्स है, क्योंकि जब तक ज़हूर बातिन नहीं होगा, ज़हूर ज़ाहिर नहीं हो
पाएगा।
ज़हूर बातिन बहुत जरूरी है। जब तक आपके लिए अपने लिए ज़हूर नहीं हो पाएगा, आप जाहिर को नहीं अंडरस्टैंड कर पा। और ज़हूर का वक्त भी यही है कि जितने बातिन सारी चीजें थी वो और जाहिर दोनों मिल जाएंगी उस मकाम पर। इंतजार कर रही है बशरियत, इंतजार कर रही है इंसान, कमाल पे पहुंचना मुंतजर है उसका। हर चीज आपके सामने है, इंसान अभी कितने लफ्ज जानता है, और जब वहां इमाम का जमाना आएगा तो कितने लफ्जों को वो इनहेंस हो जाएगा, चीजें समझना शुरू हो जाएगी। अभी आज से कुछ साल पहले आपके लिए चीजें बहुत ताज्जुब वाली थी, इंसान किस तरह एक मोबाइल से यहाँ से वहां वीडियो कर सकता है, किस तरह इंसान जो है वो एक चीज से अपने ऑफिस हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, ये पहले चीजें इंसान के तसव्वुर में नहीं थी, लेकिन इंसान का जहन रुस्त कर रहा है। मगर इसी जहन रुस्त करने के साथ अगर बातिन रुस्त करता गया तो वो जाके ज़हूर से मिल जाएगा। बहरहाल इसको हम मद्देनजर रखें और अपनी हर हफ्ते की कोई भी प्लानिंग करें। और अजीज भी है कि हफ्ते में एक दिन में एक घंटा, और खास जुम्मे के लिए एक घंटा दीनी तालीम के लिए मुख्तस करो। कुछ तो इंसान करे, बहाने तो इंसान का बहुत है, जी मैं यूं मसरूफ हूं, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं आप उस वक्त बहाना नहीं चलेगा। मतलब तो बेहतर है अभी से बहानों को दूर करें हम और अपनी जिंदगी को इस तरफ ले कर आए। पर मैं ज्यादा जहमत हूँ जो बैठे में। और आखिरी अस्तग़फ़ार बहुत जरूरी है, क्योंकि चीज जब गलत लगी हो तो पहले इंसान उसको धोता है, दूर करता है, फिर नई चीज लेकर आता है। किसी बर्तन में अगर चीज गलत हो, गलत पानी हो, निजासत हो, तो आप जितना उसमें डालते रहे वो नजिस होता रहेगा, तो पहले उसको साफ करें, फिर उसमें सही चीज डाली जाए। इंसान अपने आप को साफ करे अस्तग़फ़ार से। आयतुल्लाह फातमी ने आप के जो बुजुर्ग के दिन आलिम है, वो खुद अपने एक स्पीच में किसी एक आलिम दीन से नकल करते हैं, उन्होंने कहा कि तेहरान शहर के करीब एक गांव था, वहां एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। गांव वालों ने डिसाइड किया कि उनका बेटा है, इसी को आलिम दीन बनाए, सब जमा हो गया कि भाई अब आप ही हैं। उसने ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, इन्होंने फोर्स किया, बन गया, लिबास पहना, करता रहा, जमाना गुजर गया। एक दिन अपने आप को आईने में देखने लगा तो सफेदी उसके आ गई बालों में, उसको एकदम ख्याल आया कि तुम हक नहीं रखते थे उस काम का, तुम्हें तो बहुत सी चीजें पता भी नहीं थी, तुमने अपनी तरफ से बताई थी, तो तुम कम अज कम अभी भी वक्त है, रोज़े कयामत में जब खुदा की बारगाह में खड़े होगे तो क्या जवाब दोगे? शर्मिंदा हुआ उसने, बड़ा मुश्किल था, उसने फैसला किया कि मैं लोगों को बताऊं। मेंबर पे गया, लोगों को बोला कि मैं अभी तक जो आपको बताया बहुत सारी बातें मैंने पता नहीं सही बताई नहीं बताई, बहुत सी बातें मैंने आपको अपनी तरफ से आला आला रंग बता दिया, तो मुझे माफ कर दो। लोग गुस्से हो गए, नाराज हो गए, लिबास उलट दिया, माल गारत कर दिया, एक आध लिबास में गांव से बाहर निकाल दिया। तेहरान में एक जगह पर देखा कि नूरानी सी बुजुर्ग शख्सियत है, क्योंकि तौबा कर आया था, दिल रंजीदा था, तो उस शख्स ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तौबा की, तुमने दस तो पढ़ा ही हुआ है, फलाने आलम के पास जाओ और दस पढ़ना शुरू कर दो। फलाने आलम के पास गया तो उनका मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, वापस हो गए। वापस गए दोबारा वो शख्स मिला बुजुर्ग आवाज, कहा क्या हुआ? कहा वो आलम के पास वक्त नहीं है, आपने कहा था, कहा उसको बोलो जोर से पहले कि तुम्हारे पास आधा घंटा है उसमें पढ़ाए, जबकि उसके पास जाके जोर से पहले टाइम है तो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। एक दिन आलम के पास गया, कहा मेरी किताब गुम हो गई है, तो कल मैं रहना कल देखेंगे। जब जैसे बाहर निकला तो फिर वो शख्स मिल गया, कह रहा क्या हुआ? कहा किताब गुम हो गई उनकी। कहा उसको बोलो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने किताब को उठा के फलाने कफसे में रैक में रख दिया है, वहां पड़ी हुई है। जब ये वहां गया आलम अदीन को ये बताया, आलम अदीन परेशान हो गया। आलम अदीन बताया कि वो कौन शख्स है कि जो मेरे औकात से भी वाकिफ है, मेरी किताबों से भी वाकिफ है, वो कौन है? तो इसने कहा कि जी मैं नहीं जानता उस शख्स को। तो ये आलम अदीन समझ गया कि वो कोई और शख्स नहीं, वक्त का इमाम है। वक्त का इमाम है, लेकिन वक्त के इमाम ने इजाजत नहीं दी कि वो शख्स जवान तालिब इल्म पहचान पाता। तो उस आलिम दीन ने उस शख्स को कहा, जवान तालिब इल्म को, अब जब तुम्हें वो मिले तो उनको मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा और ये कहेगा कि कब हमें ज्यारत नसीब कर रहे हैं। ये फिर मिला, इसको फिर मिल गए, ये नहीं पहचाना कौन है। तो जब इसने सलाम पहुंचाया उस आलिम दीन का पैगाम, तो वो फरमाते हैं कि उससे कहो कि हम तुमसे राजी हैं, लेकिन फिलहाल मसलहत नहीं कि हम तुम्हारी ज्यारत करें। बस जाने को था, इमाम हमें देख रहा है, इमाम हमारे हाल से वाकिफ है। खुद इमाम की हदीस है कि हम तुम्हारे हाल से वाकिफ है, हम तुम्हारी खबर रखते हैं, अगर हम तुम्हारी खबर न रखते तो दुश्मन तुम्हें नोच डालते। पनाह अहले बैत अब मोहिम है, ये नेमत है अल्लाह की, और इसी पर सवाल किया जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने आप को अपने वक्त के इमाम के सामने हाजिर नाजिर जाए, अपने जवानों की, अपने बेटों बेटियों की तरबियत करें, और इसके जहन में अभी से डालें कि तुम सिर्फ और सिर्फ इमाम जमाना के लिए पढ़े हो। तुम्हारा कोई, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो बिस्मिल्लाह, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम कुछ भी बनना चाहते हो, मगर तुम्हारा हर चीज तुम्हारे वक्त के इमाम के लिए। अजीजाने फिर तो शायद हम कुछ कर पाए कि जो करबला में सदा आई थी, है कोई मेरी मदद करने वाला? ये मदद है अजीजाने मोहतरम, ये जमाने की मारिफत है। भारत मैं से ज्यादा मुजाहिम नहीं होगा, बुजुर्ग शख्सियतें मौजूद हैं और उनका भी खिताब है इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम के जल्द से जल्द ज़ुहूर में ताजी रखा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाला।